We studied.
जैसे आपने सुने परम पूज्य वासु घोष प्रभु इस्कन बड़ौदा के अध्यक्ष हैं, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान हैं, हिंदी भाषा भी बड़े निर्भुल भाव से बोल सकते हैं और वैदिक साहित्य और ग्रंथों पर बहुत बड़े प्रवेश हैं, फिर भी हमको इसे कहते हैं, ये तो उनके विनम्रता ही है। तो फिर भी प्रभु जी अगर आदेश करेंगे तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा जब जब आने के लिए। हरे कृष्ण। तो समय कम है तो कीर्तन तो आप इतने देर से सुन ही रहे थे, अभी कुछ प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे प्रभु जी ने अनाउंस किए, आज एक विशेष तिथि है कि आपके मंदिर में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की उपासना भी हो रहा है और कुछ ही दिन पहले जब जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ भगवान के प्रसिद्ध और पवित्र घोष यात्रा महोत्सव हुआ तो आपके इस्कन बड़ौदा मंदिर भी इस घोष यात्रा को भी मनाया बड़े उत्साह से। तो आप सब जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होता है तो जगन्नाथ जी श्री मंदिर गुंडीचा मंदिर से निकल करके रथ में विराजमान होकर के जाते हैं गुंडीचा मंदिर को और वहाँ पे एक हफ्ता रुकते हैं और फिर दशमी के दिन वापस आते हैं। तो वहाँ पे जाके जब रुकते हैं गुंडीचा मंदिर में, जाने में श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ये तीनों ही जाते हैं तीन रथ में। तो आज जिस दिन यात्रा हुआ था वो द्वितीय तिथि था, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, द्वितीया के दिन भगवान ने जाते हैं। तो आज तीसरा दिन है, पंचमी तिथि है। तो जगन्नाथ मंदिर को माना गया है कि श्री लक्ष्मी जी के मंदिर है, श्री मंदिर कहते हैं क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र में ही है मान करके, और समुद्र के पुत्री है भगवान भगवती लक्ष्मी, तो वो उनके एरिया है, उनके राज्य है। तो इसे उड़ीसा में कहावत है कि जगन्नाथ जी अपने ससुराल में रहते हैं घर ज्वाई बन करके, क्योंकि लक्ष्मी जी क्षीर सागर मंथन के समुद्र से निकले थे ना, तो समुद्र की बेटी है। तो समुद्र के पास जो मकान है, घर है श्री मंदिर, वहाँ पे भगवान रहते हैं। तो मतलब अपने ससुराल में रहते हैं अपने पत्नी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ। तो अभी जगन्नाथ ने अपने घर से निकले और एक हफ्ता के लिए बाहर चले जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी को बोले भी नहीं, उनसे बिना बोले, उनसे परमिशन बिना लिए वो अपने भाई और बहन को लेकर के साथ में वो गाड़ी में रथ में बैठ करके चल दिए। तो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बहुत क्रोधित हुई, क्रोध करके वेट किया क्या करेंगे। कई बार आकर के देखी, एक आप पुरी में अगर गए होंगे, श्री मंदिर का जो पूर्व दिशा पर जो गेट है सिंह द्वार, उसके ऊपर में दक्षिण द्वार का दक्षिण की तरफ एक मंडप है जिसको कहते चाहनी मंडप, वहाँ लक्ष्मी जी आकर के बार बार चाहनी मतलब देखते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। देखते देखते उनको सहन नहीं होता है, तीसरा दिन अपने ग्रुप सजा करके वो आते हैं, अनुसरण पता लग गया कि उन्होंने वहाँ गए हैं जंगल में, कुशवाड़ी में गए हैं सुंदराचल में। तो उन्होंने अपने पूरे सज धज करके अपने दास दासी के साथ और सोने चांदी की पालकी में बैठ करके और खूब प्रोसेशन के साथ आती है, आ करके श्री मंदिर में से निकल करके गुंडीचा मंदिर जहाँ पे रथ खड़ा रहता है जगन्नाथ जी मंदिर में है, मंदिर के अंदर तो नहीं जाती, बाहर से आकर के खूब हल्ला गुल्ला होता है, झगड़ा होता है। जगन्नाथ जी के जो सेवक होते हैं उन सेवक को सब पकड़ पकड़ कर अरेस्ट कर बांध कर लाते हैं। सब लक्ष्मी जी के पास आकर के विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो लक्ष्मी जी सबको दंडित करती है। और फिर सब बोलते क्यों लेकर कर जल्दी जा करके हमारे ठाकुर को हमारे पास लाओ, ले आओ वापस। हम वो बोलते हैं कि हम कल ला के ले आएंगे, कल ले आएंगे, आज छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए। तो लक्ष्मी जी गुस्सा करके रथ के जाकर रथ में एक चक्का आधा तोड़ करके ले जाते हैं, रथ को तोड़ देते हैं। तो आज का दिन लीला होता। जब चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद निवास करते थे, तो गुंडीचा रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ पधारेंगे, साल में एक बार आते हैं, इसलिए गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है कि भगवान पधारेंगे, एक साल तक तो कोई रहेंगे नहीं, ऐसे ही गन्ना पड़ा रहता है। तो आज भगवान आने का जो समय आया, एक दिन पहले ओ राज कर्मचारी उनको सफाई करते हैं भगवान आने से पहले। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहे तो उन्होंने राजा से मांग करके ये सेवा आपने ले ली कि ये सफाई की सेवा हमको दे दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु आपने सकड़ों परिकर कई सौ लोग उनके साथ में, उनके फॉलोअर्स थे, सबको लेकर के सुबह से दोपहर तक बड़े ध्यान से गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे। भगवान ये शिक्षा देते हैं ये मंदिर मार्जन करके कि हमारा हृदय एक मंदिर है, इस मंदिर में जब जो अनर्थ रहेगा, गंदगी रहेगी, तो भगवान जो परम पवित्र है, पवित्रम परमम, इसे अर्जुन भगवद्गीता में कहते हैं पवित्रम परमं महान, तो इसे परम पवित्र भगवान इस गंदे स्थान में कैसे आएंगे, तो अगर साफ किया जाए तो आ सकते हैं। तो इसीलिए हृदय रूपी मंदिर को साफ का शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन के द्वारा खुद सिखा, खुद अपने हाथ से साफ करते हैं। तो उसके बाद जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा के माध्यम से गुंडीचा मंदिर में पधारते हैं। तो जब आ जाते हैं तो लक्ष्मी जी की बड़ा गुस्सा आती है। तो इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उत्सव में भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार के टोली बना करके खूब कीर्तन नृत्य करते हैं, और फिर 9 दिन तक जगन्नाथ भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी पुष्प वाटिका जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में ही रहते हैं, लगभग दिन भर 9 दिन तक वहीं रहते हैं, वही खान पान, नरेंद्र में स्नान वहीं होता है उनका, सारे भक्तों के साथ लेकर। जो तीसरा दिन पंचमी तिथि आया तो हीरा पंचमी के उत्सव देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साहित हुए। जो राजा प्रताप रुद्र उनका अभी उद्धार हो चुका था, रथ यात्रा के दिन महाप्रभु के साथ उनका मिलन हुआ था, प्रताप रुद्र उद्धार हो गया था। तो राजा प्रताप रुद्र ने अपने राजगुरु काशी मिश्र को आदेश देते हैं कि इस बार का जो हीरा पंचमी का उत्सव ऐसे करो ताकि रथ यात्रा से भी और अधिक आकर्षित हो, खूब साज बाज में द्विगणित समन लगा करके खूब बढ़िया रकम से करो कि चैतन्य महाप्रभु देख करके खूब आनंद लें, खूब आश्चर्यचकित हुए हीरा पंचमी की यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु भी हीरा पंचमी की यात्रा देखने के लिए गुंडीचा मंदिर से सुंदराचल से निकल करके सिंह द्वार में जाते हैं, श्री मंदिर में जाते हैं। यद्यपि जगन्नाथ हो यहाँ है लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ रहती है। हीरा पंचमी लक्ष्मी जी की यात्रा, हीरा शब्द का अर्थ है देखना, पंचमी मतलब तिथि, ये पंचमी तिथि में लक्ष्मी जी आकर देखती है, देख करके गुस्सा होकर आज झगड़ा करती है, तो इसलिए हीरा पंचमी नाम है। तो लक्ष्मी जी का ये उत्सव देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ श्री मंदिर में जाते हैं। और राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र को कहता है कि मंदिर के स्टोर हाउस में जो भी साज सामग्री है जो भी अलंकार है, जो कि वस्त्र आभूषण छत्र चामर आदि है, और मेरे स्टोर हाउस में जो भी कुछ है सब मिला करके और भी जो आवश्यकता है खूब बड़े पैमाने पर बड़े प्रशासन के साथ उस हीरा पंचमी उत्सव को कीजिए। तो जितने लोग हीरा पंचमी उत्सव से भाग लेते थे उनके डबल उस समय भाग लिए, और राजा ने ऑर्डर दिया कि चैतन्य महाप्रभु जब आएंगे तो उनको उनके भक्त लोग को पूरा भीड़ में नहीं, सामने कुछ अच्छे से बैठने की व्यवस्था करो, ताकि वो देखें हीरा पंचमी क्या होता है, कैसे उत्सव होता है। ऐसा ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ पहुँचे तो काशी मिश्र ने उनको सामने लेकर के उनको बैठने की व्यवस्था किया। तो महाप्रभु ने देखे लक्ष्मी मंदिर से, आप लोग जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो देखे होंगे जगन्नाथ मंदिर के पीछे बाएं तरफ से उत्तर दिशा पर, उत्तर पश्चिम दिशा पर श्री महालक्ष्मी के मंदिर है। महालक्ष्मी मंदिर से प्रोसेशन निकलेगी, महालक्ष्मी बड़े चमकते हुए सोने चांदी की तमजानी जिसको पालकी के ऊपर बैठ करके उनके विग्रह आएगी, खूब सजे धजे होंगे, बड़े संख्या में 100 लगभग दास दासियां खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके छत्र चामर झाड़ी झाड़ी सब ले करके वो निकलेंगे। बहुत बड़े प्रोसेशन निकलेगा, बहुत प्रकार के अलंकार आभूषण लेकर के निकलेंगे, बाजे गाजे बजा करके निकलेंगे। निकल करके सिंह दर्जा पास आकर देखेंगे महाप्रभु तो नहीं है, महाप्रभु तो श्री मंदिर में है। तो धीरे धीरे प्रोसेशन बाहर निकलेगा तो महाप्रभु सारे भक्त लोग उनके साथ में चलेंगे, बहुत भीड़ होता है वो भी देखने के लिए। तो प्रोसेशन करके कीर्तन बाजे गाजे बजाते पालकी में चढ़ करके लक्ष्मी देवी सुन श्री मंदिर से लेकर के गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। वहाँ पहुँच करके और उनका वचनिका उनका गाली गलौज होगा, झगड़ा होगा। तो रथ के पास जगन्नाथ जी के जो सेवक होंगे दैत्यापति, तो लक्ष्मी आदेश करेंगे कि जाकर के उनको अरेस्ट करके ले आओ। तो लक्ष्मी जी का शोक जो परिकर गण है जो सेवक सेविका हैं वो जाकर के एक एक कर पकड़ करके गले में धक्का दे करके उनको अंटे में रस्सी बांध करके कमर में धक्का दे दे करके लेकर आएंगे, दो दो तीन तीन के एक साथ बांध करके लेकर आएंगे, ला करके लक्ष्मी के चरण में डालेंगे, सब दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, सबको ला कर बांध कर खड़े देंगे, 50 लोग आकर अरेस्ट करके खड़ा कर देंगे, सब हाथ जोड़ कर खड़े रहेंगे। और लक्ष्मी जी सुखून डांटेगी, बोले तुम्हारे ठाकुर ऐसा है, उनको शर्म नहीं है, कितने धन धान्य है हमारे पास, कितने बड़े संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसको छोड़ करके ये जंगल में आ गया, किस लिए आए, यहाँ है क्या आपके पास, ऐसे करके खूब गाली देगी उनको। वो लोग सब हाथ जोड़ के ठीक है ठीक है, ना लाओ उनको वापस, कहाँ छिपा के रखा है जंगल में, ना अभी हैं, वो कल जरूर ले आएंगे, कल ला कर वापस दे देंगे, आज माफ कर दीजिए, ऐसी बहुत बात कहेंगे। तो लक्ष्मी ने खूब डांट करके ताड़ना दे करके वो जगन्नाथ जी के रथ से एक पहिया को तोड़ करके फिर गुस्सा होकर के आ जाएंगे वापस। तो लीला आज भी इसी प्रकार होता है। तो उसको दर्शन करके महाप्रभु इस रस को आस्वादन करने के लिए, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जगन्नाथ भी स्वयं कृष्ण है, ये इसका इसे रहस्य क्या है, क्यों ये लीला होता है, इस रहस्य को सारे जगत को बताने के लिए और स्वयं इस रस को आस्वादन करने के लिए अपने परिकर में आलोचना उठाते हैं। स्वरूप दामोदर जो साक्षात ललिता सखी हैं उनको श्रीमन महाप्रभु पूछते हैं कि दामोदर ये क्यों है, ऐसा क्यों लक्ष्मी, ऐसे क्यों नाटक हो रहा, क्या उसका पीछे रहस्य है। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि प्रभु ये तो रस के आस्वादन, रस आस्वादन कैसा, ना लक्ष्मी जी है हमारे भगवान जगन्नाथ की सहधर्मिणी, उनके पत्नी, उनके गुड वाइफ, और अब जगन्नाथ तो इतने बड़े संपत्ति ऐश्वर्य श्री मंदिर में रहते हैं और इतने दिन रहते रहते बाहर निकलने के लिए मन किया, वृंदावन दर्शन करने के लिए मन किया, तो वृंदावन जैसे उपवन है, जंगल है, पुष्प फल की वन है और मयूर हिरण आदि पशु पक्षी रहते हैं, तो ऐसे ही उपवन एक वन है, इस वन देखने के लिए जगन्नाथ जी ने ऐश्वर्य बहुत बड़े महल श्री मंदिर को त्याग करके इतने बड़े खान पान पूजा षोडशोपचार विधि सब छोड़ करके चुपचाप अपने गाड़ी में बैठ करके आ गए देखने के लिए। तो आ गए तो लक्ष्मी जी को क्यों बोलकर नहीं आए, अपने पत्नी है उनके घर में रहते हैं उनको भी साथ में ले आते। तो शरद दामोदर कहते हैं कि इसलिए नहीं लाए क्योंकि लक्ष्मी जी का वृंदावन प्रवेश में अधिकार नहीं है, वृंदावन लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। वृंदावन लीला में तो केवल गोपीगण सहायक होते हैं क्योंकि वृंदावन में भगवान किस रूप में रहते हैं, ग्वाला गोप बन के रहते हैं। जब भगवान गोप बनेंगे तो उनके दास दासी सब गोप गोपियां बनेंगी। तो ये तो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी है, तो वो वृंदावन में उनका काम नहीं चलेगी। तो गाय रखने वाली, गोबर से कंडा बनाने वाली, दूध और दही दूध आउट करके दही मंथन करने वाली, सो ये सब काम में एक्सपर्ट चाहिए। वो इतने बड़े धन धन में ऐश्वर्य में जिसको पले हुए हैं, इतने बड़े देख रहे में जो वो किसी जंगल में रह पाएगी, तो इसलिए लक्ष्मी को नहीं लाए साथ में। तो नहीं लाए तो ये दोनों को क्यों लेकर आए, अकेले आ जाते, अकेले तो नहीं आए, बलदेव और सुभद्रा को साथ में लेकर आए। बोले बलदेव तो भी उनके साथ जंगल में थे, वो भी वृंदावन में पैदे हुए थे, वृंदावन में उनका भी मन है, रस है, वो भी थोड़ा देखना चाहते हैं। बहन अकेली थी, दोनों भाई नहीं रहेंगे तो उनको दुख होगा, इसलिए उनको साथ में ले आए। लेकिन वो दोनों अपने चुपचाप रहते हैं, कृष्ण का मन के भाव क्या निगुड़ भाव उनको कुछ पता नहीं चलता, कृष्ण अकेले ही अपना आस्वादन करते हैं ब्रजरस का। और बलदेव और सुभद्रा तो केवल आए साथ में, अपना खा पी के सोते रेस्ट करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। और लक्ष्मी जी को ब्रजरस में कोई पता ही नहीं, इसलिए उसको नहीं लाए, ना नहीं लाए तो फिर नहीं लाए, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। तो ये लक्ष्मी जी ऐसा क्यों करती है, फिर क्यों आती है इधर ना। जो प्रेमिका और प्रेमिक होते हैं उनके बीच में अगर थोड़ा सा भी मनोमालिन्य होता है, थोड़ा सा झगड़ा, कभी जो प्रेमिक है अगर उदास हो जाता है, नायक नायिका के प्रति थोड़ा उदास हो जाता है तो थोड़ा सा भी उदासपन के कारण उनको बड़े दुख होता है, नायिका के प्रेमिका को बड़े दुख होता है। उसी दुख के कारण उसके अंदर मान क्रोध उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मी जी साक्षात भगवान जगन्नाथ की सहधर्मिणी, उनके वाइफ है, अर्धांगिनी है, तो उनको बिना बोले उनकी इतनी बड़ी ऐश्वर्य थाट बाट रहन सहन रत्न वेदी सब छोड़ करके वही पुष्प वाटिका जंगल में आ जाए रहने के लिए, तो उनको अच्छा लगेगा अपने पति ऐसे चले गए, अपना सामान फोन कुछ नहीं, डिप के सटाची अपने गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, इसे चल दिए उनको बिना बताए जंगल में रहने के लिए। तो इसलिए उनका मन में जो खेद होता है, जो उनका मन में क्रोध हुआ, क्रोध प्रकाश करने के लिए इस प्रकार के अभिनय, इस प्रकार लीला करते हैं। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं, मैंने तो बहुत सुना है, बहुत देखा है, कोई अगर पुरुष और स्त्री पति पत्नी आपस में मनमालिन्य में होता है, कभी कोई छोटी मोटी झगड़ा हो जाता है, मान अभिमान होता है, तो उसका तो बिल्कुल प्रकार अलग होता है ना। कैसे ना, अभी तो मैं बिल्कुल ही नए प्रकार के रस देखता हूँ ना, क्या ना मैंने सुना हुई, वही भगवान जो द्वारका में भी थे, रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ कभी भी मन मुटाव होता था मनमालिन्य, तो उन्होंने मन मान करके बैठ जाते थे, कैसे ना, बात नहीं करेंगे, रूठ जाएंगे, क्रोध करेंगे, कोप करेंगे, अपने श्रृंगार उतार देगी, खाना नहीं खाएगी, बात नहीं करेगी, मुंह नीचे करके बैठ करके भूमि पर नाखून में कुछ लिखेगी, इस प्रकार सब स्त्रियों के स्वभाव ऐसे होता है। लेकिन इसे तो मैं कभी नहीं देखा कि स्त्री के प्रति पति ने उदासपन किया, उनको पूछा नहीं, उनको थोड़ा ना समझ कर दिया, तो स्त्री गुस्सा ना करके, कोप ना करके, गुस्सा ना कर, उल्टी अपने साथ सवन खूब बढ़िया साड़ी पहन करके, खूब सज धज करके, बाजे गाजे बजा करके आना, ये कैसा रस है भाई, ये तो मैं कभी भी नहीं देखा, ना लोक में ना परलोक में, ऐसा तो कभी नहीं होता है। अगर पति पत्नी के प्रति इसे उदासीन हो जाती है तो पत्नी मानी नहीं हो जाती, बोले ठीक है जाने दो, मैं बात नहीं करूंगा, आज खाना नहीं खाऊंगा, आज तुम्हें एक साड़ी नहीं पहनूंगा, आज श्रृंगार नहीं करूंगा, ऐसे होकर माननी को भवन में जाती है, ऐसा होती है। लेकिन ऐसा कभी होता है पति उनको नहीं पूछेगी तो ज्यादा बढ़िया ड्रेसिंग करेगी, ज्यादा बढ़िया साड़ी पहनेगी, बाजा गाजा बना कर आए कि पति के ऊपर गाली झगड़ करने के लिए, ये कौन सा बात है भाई, ये तो अद्भुत रस है। बोले यही तो है अद्भुत रस। वो बताते हैं कि कृष्ण जो है साक्षात रसिक शेखर है, रसराज है, उनके शरीर के केवल रस से ही बना है, रसमय बपु चिन्मय रस से बना शरीर, सारे रस को ही आस्वादन करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये तो पहले आप देखते हैं लोक में रस, लोक के ऐसा रस है कहाँ उनको आस्वादन करेंगे, वो तो उनके उनके अपने सहचरियों सहचरियों में इस रस का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। तो लक्ष्मी जी का ये भाव है, अद्भुत भाव। और गोपीगण का लक्ष्मी ये दिखाना चाहती है, वो कहती है कि देखो मेरे पास कितने बड़े ऐश्वर्य है, कितने थाट बाट है, रत्न पलंक है, रत्न वेदी है, इतने बड़े ऐश्वर्य, इतने प्रकार के 60 पोटी भोग लगता है, 56 प्रकार के आइटम लगता है, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, फूल पुष्प बाड़ी है, जंगल है, पत्र पुष्प किसल है, इत है, यहाँ तो क्यों छोड़कर, क्या है इधर, क्या आनंद है उसमें। तो इसी को दिखाने के लिए जंगल में है, जंगल के सामने आकर दिखाएंगे अपना ऐश्वर्य, अब देखो कैसे सोना रूपा ऐश्वर्य, कितने दास दासी, तो फिर भगवान ने शायद मान जाएंगे, हाँ हाँ ये बेकार है, यहाँ अच्छा रहने का व्यवस्था नहीं है, ये कुटिया है, ये तो फर्स्ट क्लास अटैच बाथरूम ए सी वाला घर है, वहाँ चलना चाहिए, खान पान व्यवस्था सब बढ़िया है, तो यहाँ जाना चाहिए। तो इसलिए ऐश्वर्य दिखाते हैं, भगवान बोले नहीं नहीं ये तो बेकार ही रहेगा, वहीं चलते फिर आ जाएंगे, इसलिए ऐश्वर्य दिखाते हैं। जगन्नाथ जी के सेवकों को भी दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं जंगल में आकर के, ये देखो तो क्यों छोड़ के आ गया बिना मुझे, ये क्या। तो इस भाव से इस रस को आसादन करने के लिए जगन्नाथ जी के सामने लक्ष्मी अपने वैकुंठ ऐश्वर्य को पूरा प्रदर्शित करने के लिए आती है। वो आपने बड़पन है क्योंकि भगवान की अर्धांगिनी है ना, नहीं और साक्षात, और बाकी जो उनके पति के दास था सब उनके नौकर वाकर दास है, तो उनके ऊपर पूर्ण आधिपत्य दिखाने के लिए मैं कैसे कंट्रोलर हूँ, आप घर में रहिए सारे घर मैं संभाल लूंगी, आप कुछ नहीं करना, क्यों टेंशन लेते, चलिए घर में आप खा कर रहिए, सारे झामला सब बाहर अंदर सब मैं देख लूंगी। तो अपने पति पत्ति अपने अधिकारिणी वृत्ति अपने ये सब दिखाती है, तो पति समझेंगे ओ माई वाइफ इज वेरी परफेक्ट, सब कुछ संभाल लेती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, व्यापार घर द्वार बिजनेस सब कुछ, सब दास दासी सब कुछ संभाल लेती है। तो इसलिए सद मान जाए, तो इसलिए हर प्रकार इस प्रकार ऐश्वर्य दिखाती है। तो बोलते हैं अच्छा सही बात है, तो सही बात है, ऐसे करना चाहिए। तो ठाकुर जी फिर ये छोड़ छाड़ करके ये जंगल में क्या मंगल है, किस लिए आते हैं। तो जो शुद्ध रजवासी स्वर्ग दामोदर जी कहते हैं, शिवास जी कहते हैं, शिवास ठाकुर लक्ष्मी की तरफ से होते हैं और स्वर्ग दामोदर राधा रानी के प्रतिनिधि होते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं बेकार, तुम्हारा तो जंगल है, ये है क्या, तुम्हारे गांव के लोग जो हैं वो तो जानते हैं कि पढ़े लिखे तो है ही नहीं, सारे इंप्रेशन वाले, अपना नाम भी नहीं लिख सकते, जन्म हुए 3-4 साल से बछड़ा चराए, बाद में गाय चराए, गाय दूध दोना गोबर गाय मूत्र, बस उसके अलावा जानते क्या है, अटैच बाथरूम कमरा तो देखे नहीं, बड़े बड़े ना ढंग से कपड़ा पहने ना ढंग से कुछ है ही नहीं, उनका पास सड़ंकार फड़ंकर होता क्या, वन धातु जंगल में नए लाल पीला नीला मिट्टी के कलर, जंगल के फूल के माला और नाना प्रकार के फूल माला, जंगल के मिट्टी कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इसको पैंच बोलते हैं ना, एक माला पहनते हैं गुंजा, गुंजा के माला और धन रत्न तो होता ही नहीं, इसे जंगल के गुंजा माला, वही पत्थर लाल नीला पीला पत्थर, कोई मिट्टी कोई फूल 5-7 प्रकार की, इसी से फल मूल कंद से होता ही आपके पास क्या, ये दरिद्र जंगल से इसे होता है, उनके पास होता है कुछ हुँ? और हमारा क्या थाट बाट है, उसको छोड़ कर आते हैं। तो और कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब अपने जो गोप गोपियां हैं वो तो गोप लोग तो गाय चराते हैं, वो जो स्त्रियां हैं हम देखो कितने हैं, एक्सपर्ट है, कितने पढ़ी लिखी, सब कंट्रोल करते हैं, कितने फर्स्ट क्लास है। और आपके यहाँ स्त्रियां हैं क्या जानती है, गर्म करके दूध गर्म करेगी और दिन भर दधि मंथन करेगी, मक्खन निकालेगी, वो जानती क्या, वो पढ़ी लिखी तो है ही नहीं, कुछ चाहते नहीं ना, बाकी कुछ काम दाम करना चाहती नहीं उनको। तो उसको सुन करके स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, बोले अरे तुझे पता नहीं वृंदावन का ऐश्वर्य तो दिखती नहीं, वृंदावन का ऐश्वर्य के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी एक बार आए थे, आ करके देखे, देख करके जो सृष्टि करता है, जो सारे सृष्टि में सारे वैभव को डाल कर रखे हैं, उन्होंने आ करके वृंदावन में ऐश्वर्य दिख करके संहिता में लिखे हैं। श्रिया कांता कांत परम पुरुष कल्प तरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयामृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदास्वादमपि च सजत्र खिराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान निमेषार्धख्य नाजत् प्रापि न समयः। तो ये सर वर्णन ब्रह्मा जी की स्थिति में कहते हैं, बोलते पता नहीं जहां श्रिया कांता कांता पुरुष कल्पतरु, जहां कल्पतरु जहां जो पेड़ पौधे देखते हैं ना, ये सामान्य पेड़ पौधे भी सारे कल्प वृक्ष हैं। तुम्हारे वैकुंठ में होगा एक पारिजात पेड़ लेकर के झगड़ा करते हैं, यहां तो सारे पेड़ जो हैं, सारे पौधे लते सारे कल्प वृक्ष है, जो चाहे कल्प वृक्ष का ये उपाधि है, ये उनका खासियत है, कोई भी कुछ भी कल्पना करे, कुछ भी मांग करे वो दे देगा। आपके सामने आम के पेड़ है, आपको केले चाहिए, बोले मुझे केले चाहिए, केले दे देगा, नारियल चाहिए, नारियल दे देगा, एप्पल चाहिए, एप्पल दे देगा, सब दे सकता है कल्प वृक्ष। लेकिन धन्य है ब्रजवासी, वो कुछ मांगते ही नहीं, जो फल वो फल भी नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए, नहीं मांगते। और चिंतामणि प्रकर सत्म सुख, बोलते जिनका फर्श है, जैसे हमारे मार्बल के फर्श है, तो जो वृंदावन के जो भूमि है वो तो चिन्मय भूमि है, चिंतामणि से बनी हुई है। चिंतामणि आप तो नाम सुने के देखे, कभी देखे नहीं, मणि भी ऐसा है कि वो भी चिंता पूरी करने वाली है, आपके टेंशन को दूर करने वाली। पारस पत्थर तो जानते हैं, एक ऐसे पत्थर होता है उसमें लोहे को छू दो तो सोना हो जाए, चिंतामणि उससे भी और गुणवान है। तो जिसका भूमि ही चिंतामणि से बना है, चिन्मय से बना हुआ, और चिंतामणि कर्पवृक्ष सुरभिवेशन, और सारे गाय जो है ना उनके संबंध तो गोधन है, सारे गाय सब एक से कामधेनु है, एक कामधेनु गाय गाय थी किसके पास, वशिष्ठ जी के पास, एक कामधेनु गाय में सहस्राख्य अर्जुन के संपूर्ण लाखों सैनिक राज परिकर को पूर्ण रूप में संतुष्ट कर दिया, एक गाय, वहां लाखों लाखों संख्या में कामधेनु है। लेकिन धन्य है ब्रजवासी, उनसे दूध के अलावा और कुछ मांगते ही नहीं, वो चाहे तो करोड़ों करोड़ों वैकुंठ आपके जो श्री मंदिर है ना, कितने श्री मंदिर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने जगन्नाथ मंदिर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक एक गाय की इतनी शक्ति है। लेकिन ये हमारे गोपियां हैं, कुछ नहीं चाहती ना, केवल दूध चाहती है, फिर दूध किस लिए, लाला को पिलाने के लिए, इसीलिए दूध आवड़ती है, इसीलिए दधि मंथन करती है कि माखन निकलेगा तो लाला खाएगा, माखन चोरी करके खाएगा, बाकी कुछ चाहती ही नहीं, उनका मन में कोई इच्छा ही नहीं होता, भोगने का इच्छा मन में उनका है ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी जमीन जिसका चिंतामणि में बना हुआ, सारे घास पौधे पेड़ लता सब जो चिंतामणि कल्प वृक्ष कल्प पादप है, और जितने गाय बछड़े हैं सारे कामधेनु है, और क्या है ना, जो पानी है सब अमृत है, तो यम अमृतम, सारे पानी चाहे कुआं का हो, तालाब के हो, त्याप के हो, चाहे नदी के हो, सारे पानी अमृत है। यहां तो एक ड्रॉप अमृत के लिए खीर सागर मंथन के निकला तो देवासुर संग्राम हो गया, सारे देवता उसमें भीषण संग्राम थे एक मटका के लिए, यहां तो सारे पानी ही अमृत है, लेकिन वो अमृत को पीती नहीं, उसमें कोई अमृत की इच्छा ही नहीं, किसी पीने के लिए इच्छा ही नहीं करते। आप अमृत के लिए इतनी बड़ाई करते हैं, यहां अमृत की धारा बहती है, कोई पीती नहीं, उसमें क्या पड़ी है।
कथा गानम, बातें करने आप बाजा बजा कर गीत गाती है, यहां तो साधारण बातचीत ही गाना है। कथा गानम गमनम नाट्यम, आप बड़े चाल चल कर गाते, यहां तो साधारण चाल ही नृत्य है, ये ऐसा भूमि है। वहां टाइम पर सेवा करते, यहां समय है ही नहीं। चिदानंदम ज्योति परमपि, यहां आपके यहां तो बड़े बड़े झाड़ियां लाइट लगाते हैं, यहां तो साक्षात चिन्मय जगत के चिदानंद ज्योति से सब ज्योतिमान है। ये ऐसे वैभवशाली वृंदावन है, तो देखता है एक उपवन जैसा पुष्प वाटिका, लेकिन उसका तो वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर पाते, तुम क्या जानोगी। ब्रज के संपत्ति, ब्रज के संपत्ति का तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन धन्य है ब्रजवासी, ये संपत्ति से उनको मतलब ही नहीं। वो तो ऐसे विकारी की तरह दूध गोबर से लेकर के रहते हैं, ना फूल से फल से पानी से कोई मतलब है, कुछ नहीं, मांग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मन में तो एक ही प्रोजेक्ट रहता है, उनके पास में एक ही एजेंडा है, क्या है, कैसे भी जैसे हो हमारा पास जो भी बुद्धि वृत्ति शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य जो कुछ है सबको लेकर के, सारे प्रकार इंद्रिय प्रयास से लेकर के, केवल एक ही इच्छा है, हमारे लाला कृष्ण किसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बस। तो इसलिए ना तो इस कल्प वृक्ष से किसी लेना देना है, ना तो काम धनु से लेना लेना, ना चिंतामणि से लेना लेना, ना अमृत से लेना लेना, किससे कोई मतलब नहीं, केवल कृष्ण प्रसन्न। तो इस प्रकार भाव के सेवक को छोड़ करके आप ये रुपया पैसा दिखा करके पटा कर रखेंगे, वहां रहेंगे कृष्ण यहां रहेंगे। कहते हैं ना, दुर्योधन के मेवा तागो साग विद्रु घर खाए, ये तो कृष्ण के स्वभाव, वो प्रेम के अधीन है, प्रेम के ठाकुर है, प्रेममय बपु उनका। दुर्योधन ने हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने बड़े फीस्ट बनाया, समझा कि मैंने शल्य को भी पटा लिया तो कृष्ण को भी पटा लूंगा, कैसे पटा लूंगा, इससे बड़ा रिसेप्शन दूंगा, इससे बढ़िया 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 गेट बनाऊंगा, बाजे गाजे पुलिस मिनिस्टर बॉडीगार्ड लगाऊंगा, इतने फूल हार पहनाऊंगा और इतना बढ़िया खान पान की व्यवस्था करूंगा, रहन सहन की व्यवस्था करूंगा, तो कृष्ण हमारे पट में आ जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यवस्था किया था कि हिसाब नहीं उसका, कृष्ण कोई मतलब नहीं था। वो गए, वो पहले जाकर प्रपजाल रखे कि वो प्रपजाल तो सुनने वाला नहीं था, बोला चलो नहीं लेट हो गया खाने के लिए चलो, हम केक इसलिए खाने, अरे इतने बढ़िया फिस्ट बनाया, बोले नहीं मुझे खाने की इच्छा नहीं। तो बोला अरे चलो कोई बात नहीं, तू तो हमारा संबंधी है, जानते ना दुर्योधन का संबंधी है कृष्ण, जानते है? नहीं, दुर्योधन का एक बेटी था, उसका नाम था लक्ष्मणा, और कृष्ण के अनेक पुत्र हैं, जाम्बवती का पुत्र था सांब, और सांब के साथ दुर्योधन के बेटी के साथ शादी हुआ था। जब कृष्ण का बेटा और दुर्योधन के बेटी के शादी हुआ तो कृष्ण दुर्योधन के क्या संबंध हो, क्या संपर्क हो, संबंधी होगा ना, तो कृष्ण दुर्योधन दोनों संबंधी है, दोनों संबंधी के हिसाब से बोला चलो इसी हिसाब से हमारे घर में खाओ। तो कृष्ण ने बोलते हैं देखो तीन प्रकार से खाना होता है, एक पहले तो अगर भूखे हो भूख लगता हो जोर में तो जो मिले सो खा लो, खाना आप लोग देखा लो, मना नहीं करो, नहीं तो भूख नहीं है तो कोई खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी खाते हैं, कब ना इतने प्रेम है, भूख ना हो तो बिल्कुल कंठ तक भरा है, बिल्कुल इच्छा नहीं खाने की, लेकिन प्रेम के मारे वो दुखी ना हो जाए तो कुछ भी खा लेते, भले तबीयत मेरी बिगड़ जाए लेकिन खाना पड़ेगा प्रेम के मारे, है ना। नहीं ना तो तेरा पास मेरा भूख है, ना तेरा पास प्रेम है, ना इतने संबंध है, तो कैसे भी खाऊं, तू नहीं खाए, वहां चल गए, वहां छोड़ करके इतनी बड़ी धाट बाट रहन भाग छोड़ करके चले गए आप, गंगा पार करके विद्रु भी घर में थे नहीं, विद्रुवानी थी वो, इसे कहते हैं कि बाथरूम में थी, वो बाहर निकल करके आई और बोले चाची मुझे खूब भूख लग रही है, भूख, और जाके अलमीरा खोले केला रखा हुआ था। कृष्ण को देख करके इतनी प्रसन्न चित्त हो गई विद्रानी, इतनी प्रसन्न हो गई देखते देखते उनको पता नहीं चला केला दे रहा है कि क्या दे रहा है। केला को निकल करके केला फेंक रहा है, वो छिलका दे रहा है, कृष्ण खूब खा रहे हैं छिलका। वो भी बोल नहीं रहे कि माता जी क्या दे रही, मुझे पूछ नहीं रहे, क्योंकि केला के छिलका केला से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। क्यों? कृष्ण तो केला ना खाते हैं ना फल खाते हैं, वो क्या खाते हैं? भावग्राही जनार्दन, वस्तुग्राही नहीं है, फलग्राही नहीं है, वो भाव को खाते हैं। विद्रानी की जो भाव था उसी को भक्षण कर रहे थे, चाहे भले केला के छिलका दे दे, कुछ भी दे दे, उसी को खाते हैं, है ना। तो कृष्ण तो प्रेम भाव को खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमांग भक्ति प्रयच्छति, बोलते हैं कि पत्ता फूल और फलम, कोई जल कोई पत्ता कोई एक फूल भी दे दो, उसके लिए कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता। जल लाने के लिए, एक पत्ता लाने के लिए, एक फूल लाने के लिए, तो भगवान क्या और कुछ नहीं खाता है? केवल इसी को खाते हैं, अस्नामी उसी को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं खाते हैं। उसमें जो आपका प्रेम के पुट है, जो भाव साहित देते हैं भक्ति में, वही भक्ति को खाते हैं। फूल को नहीं खाते हैं, पत्ता को नहीं खाते हैं, कि जल को नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? अस्नामी, किसको अस्नामी, किसको खाते हैं? वो पत्ता के साथ जो भक्ति देते हैं, फूल के साथ जो भक्ति देते हैं, जल के साथ जो भक्ति, उसको खाते हैं। तो भक्ति ग्राह्य है भगवान, उसको खाते हैं। तो वो तो आपके पास नहीं, आपको ऐश्वर्य दिखाते हैं, ऐश्वर्य से भगवान को पसंद ही नहीं। बहुत दिन रहे लेकिन छिप छिप कर आना पड़ा, और इस वृंदावन के जो ऐश्वर्य तो है ही नहीं, ऐश्वर्य है वैकुंठ से भी कई गुना ज्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन यहाँ माधुर्य के कारण ऐश्वर्य छिपी हुई है। इतनी माधुर्य है लोगों पास, इतनी मधुरता है, इतने भक्ति के भाव है, कि ऐश्वर्य सब रहते हुए भी छिपी हुई है। पेड़ पौधे घास फूस बन करके पानी बनकर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ का ऐश्वर्य उसके एक सामना कुछ भी नहीं कर सकता। इतने महा ऐश्वर्य संपत्ति है, लेकिन फिर भी माधुर्य के कारण सब छिपी छिपी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर के बीच में जो बातचीत होता है हेरा पंचमी के दर्शन पर, बड़ी घन रस की बातें हैं। उन्होंने गोपियों का अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के रस के वर्णन करते हैं, जो यहाँ आप लोग सब समझ भी नहीं पाएंगे। बड़े गुह्य से गुह्यतर रस कितने प्रकार के होते हैं, मुग्धा प्रगल्भा आदि आदि, अलग अलग प्रकार के नायिका होते हैं, उनके भाव कितना प्रकार होता है, उसके रस कितने प्रकार होता है, और भगवान रसिक होने के नाते, रस के राज होने के नाते, इन रस को आस्वादन किस प्रकार करते हैं, विशेष वर्णन करते हैं। इसीलिए ये रथ यात्रा महोत्सव केवल दिखाने के लिए नहीं, उसका पीछे बहुत बड़ी रस छिपा हुआ है, बहुत भारी रस है उसका पीछे। यही रस का आस्वादन करने के लिए रसराज जगन्नाथ बाहर निकल करके रथ में चढ़कर जाते हैं, और कुछ नहीं है उनका पीछे। वही रसिक से करे, उनका पीछे रस ही छिपा हुआ है। और जिसका पास से रस हो, जिसका पास से प्रेम हो, वही इस रस को आस्वाद देखे और साधन करे, नहीं तो बाकी केवल प्रसाद खा करके सो जाए, बाकी कहाँ जाने। हमारे ठाकुर जी ऐसे अद्भुत हैं, आप तो देखे होंगे ठाकुर जी, बड़े किमत कम्बकार है ना जगन्नाथ जी हमारे। बाकी दो विग्रह खड़े हैं उनके सामने, राधा श्याम सुंदर जी खड़े हैं, नितान गौर सुंदर खड़े हैं, कितने सुंदर पैर है, चरण है, हस्त कमल है, आंख है, सुंदर बपू है, कितने सुंदर विग्रह है, कितने सुंदर है। हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ को देखो, चरण तो है ही नहीं, हाथ भी ठूटा ऐसे ही है, और आंख तो पता नहीं, पूरा विग्रह में तो बड़े बड़े तो ही आंखें और कुछ है ही नहीं, है ना, वो कभी बंद ही नहीं होता, 24 आवर्स ओपन, पलक भी नहीं गिरता, हमेशा खुला रहता है ना। कभी कभी आप भी आंख खुला करते हैं, बड़े आंख करते हैं कभी कभी, नहीं कभी ऐसे बड़ी आश्चर्य में घटना घट, अच्छा सभी का आंख निकल पड़ता, ऐसा क्या है ना, बड़ी आश्चर्यचकित, ऐसी कोई घटना अवसर पर सभी का आंख भी विस्फोरित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर पलक इसे बहुत बड़ा से बड़ा आंख करके देखते हैं। तो जब कृष्ण के सामने बहुत विशेष आश्चर्य की घटना आ जाए, वहां आकर्षण के विषय प्रस्तुत हो जाए तो कृष्ण की आंख विस्फुरित हो जाता है। इस दशा है ये जो जगन्नाथ हैं वो साक्षात कृष्ण है, द्वारिकाधीश है। आपने द्वारका के द्वारिकाधीश साक्षात तो ही हैं। द्वारका में रहते रहते भगवान ने जब मथुरा में थे शादी नहीं किए थे, आपने गृहस्थी बनाए द्वारका में आकर के, और छोटी मोटी गृहस्थी नहीं, खूब बड़े परिवार है। आप सब जानते हैं कितने बड़े गृहस्थी किए। सबसे पहले शादी तो किडनैप करके किए, अपहरण करके था ना शुरू किए शादी वहीं से। आजकल तो सरकार आईन लागू कर दिए अपहरण करने से इतने बड़े सजा हो जाएगा, लेकिन हमने ठाकुर जी सबसे पहले अपहरण करता है, फर्स्ट शादी तो किए थे ना हमने। हाँ, और वो जो शादी किए थे जिसके साथ रुक्मिणी देवी, वो भी कोई राजे जो छोड़ी, उनके घर वाले उनके भाई तो किसके और के साथ शादी जुटा के रखा था, और उस जुटा के नहीं रखा था, सगाई हो चुका था, बारात आ चुका था, बारात आ चुका था और शादी होने ही वाला था। मंगन होने के लिए देवी पूजन करने के लिए गई थी, वे हाथ से घंटी बाकी था, इतना ही बाकी था। लेकिन सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले लव लेटर रुक्मिणी जी ने लिखी थी, प्रेम पत्रिका। हाँ, भागवत प्रमाण है उसका, उनने लिखी वो लेटर के हूबहू 12 श्लोक भागवत में लिखी हुई है। हाँ, और तभी भी कैमरा था नहीं, फोटो भी नहीं दिखी थी। रुक्मिणी जी ने बता रही, हे प्रभु हे भुवन सुंदर, मैं आपको देखा तक नहीं, अभी तक फोटो भी नहीं देखा था, कैसे पट गई, हमें कोई देखा नहीं, कैसे राजी हो गई शादी करने के लिए। वो पहले लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतान्ते, हे भुवन सुंदर आपको मैंने अब तक देखी नहीं हूं, लेकिन सुना बहुत हूं, क्लास कभी नहीं मिस करती थी उन्होंने, यही बड़ी गुण है। अगर भगवान को प्राप्त करना हो, भगवान आकर के आपने घर में जबरदस्ती आपको अपहरण करके ले जाए, तो कौन सा गुण होना चाहिए आपके पास ताकि भगवान आपने धाम से आकर के अपने घर से आपको छीन कर ले जाए। आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, जानते हैं क्या योग्यता होना चाहिए, आकर के ऐसे ऐसे ताली बजाने से नहीं होगा, हाँ, डोनेशन दे देने से नहीं होगा, हाँ, प्रसाद खाने से नहीं होगा। क्या गुण है ये भागवत से दिखाते हैं, फर्स्ट परिणय में भगवान दिखाते हैं। अगर आप कभी भी जीवन में क्लास मिस नहीं करते, सुनने के लिए बड़ा लालसा है, श्रवण लालसा है, तब भगवान अपने धाम से दौड़ कर आपने अपने घर से छीन कर ले जाएंगे आपको। यहां सिलेक्शन इलेक्शन नहीं है, ये तो छीना झपटी की काम है। हाँ, जिनका पास सुनने के लिए इतनी बड़ी प्रगाढ़ लालसा है, और यहां तो कथा के लिए SMS भी भेजे नहीं, लेट होगा जी हमें, तो भगवान कहे को आए, क्या को आए, भगवान के पास भी निमंत्रण भेजे तब भी नहीं आएंगे, अगर आप जानते हैं तुझे तेरा क्या। रुक्मिणी देवी भगवान को तो दर्शन ही नहीं की थी, केवल गुण था उनका सुनने का प्रगाढ़ इच्छा, इतने सुनने का लालसा थी, श्रवण लालसा, सुन करती थी। नारद जी आदि बड़े बड़े भक्त द्वारका से जा जा करके आप वर्णन करते थे विस्मक दरबार में, और रुक्मिणी देवी बड़ी ध्यान से इस कथा को सुनती थी, भगवान की कथा को लीला कथा सुन सुन करके मन बना ली, अगर जीवन में किसका हाथ पकड़ूंगी तो केवल उनकी, जिनके बारे में सुन चुकी हूं, सुन करके। अब सुनेंगे नहीं तो क्या करें। इसलिए भगवान को देखना होता है तो शास्त्र कहता है, कैसे देखना होता है, पश्यंती करण चक्षुषा न कि चर्म चक्षुषा, इस आंख से भगवान को नहीं देखा जाता, कान से भगवान को देखा जाता है। तो कान से कैसे देखेंगे, देखना तो तभी होगा जब दोनों दोनों को देखे, हाँ देखते हैं, इसीलिए ठाकुर जी ने हमारे आंख खोल कर बैठे हैं, देखना चाहते हैं, नॉन स्टॉप 24 आवर्स देखते हैं रात दिन, उनका सामने आपके एक बार आ तो जाओ। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हे स्वामी हे जगन्नाथ, मेरे नयन पथ के पथिक बन जाओ। हमारे नयन तो 1 मिनट में 4 बार पलक गिरता है, क्या दम है देखने के, सामने देखो तो 200 मीटर के आगे दिखाई नहीं पड़ेगा, पीछे तो देख ही नहीं सकते, क्या नयन में ताकत है देखेंगे, और लाइट चला जाए अभी अपने आप भी देख नहीं सकते, क्या देखेंगे। सचमुच हम अपना नयन से देख भी नहीं सकते हैं, देखते तो हमारे ठाकुर जी हैं दिन रात 24 घंटे। उनके सामने आ जाओ, हाजिर हो जाओ, वो देख लें तो आपको कल्याण हो जाए। कितने सरल है, कितने उदार है हमारा ठाकुर। आंख खोलकर बैठा है देखने के लिए, कोई सामने तो आ जाए मैं देख लूं। लेकिन देखेगा कौन? जो सुनेगा वो देखेगा, नहीं सुना तो देख नहीं सकता, क्योंकि देखना तो कान से होता है। खूब सुनो तो जगन्नाथ जी आंख खोल करके आपके घर में जाकर देख लेंगे, आपको देख नहीं ले लेंगे। इसीलिए हाथ ऊंचा करके बैठे हैं। कभी कभी आप लोग भी हाथ ऊंचा करते हैं, दो दो हाथ आपका भी है, करते हैं कब करते हैं? बहुत दिन के बाद आपके बहुत डियर एंड नियर मित्र मिल जाए तो ऐसे आपको देख रह जाएंगे। उनको देखने मात्र से जी आइए, बिल्कुल हाथ उठा, आलिंगन मुद्रा ये है ना, नहीं आओ गले मिलते हैं, बिल्कुल लिपट जाएंगे गले से गले। ये जो मुद्रा है ऐसे करके आओ गले मिलने के इन्विटेशन आमंत्रण है, आलिंगन के लिए आमंत्रण है। तो भगवान हम जैसे बद्ध जीव को आलिंगन करने के लिए हाथ उठाकर बैठे, कभी हाथ नीचे ही नहीं करते, एवर रेडी। हम तो कभी एक बार उठाए फिर कर दिए नहीं। हम अगर चले भी गए उनका हाथ उठाने हमको कौन गले मिलाएगा, वो तो ऐसे बैठे थे। बाकी सारे भगवान तो ऐसे कभी बांसुरी पकड़े, कभी शंख चक्र पकड़े, कुछ पकड़े, तो हमको कौन गले में लगाएगा। लेकिन हमारे ठाकुर ऐसा है 24 घंटे हाथ उठाकर बैठे, कभी भी आ जाओ, दिन में रात में सुबह शाम दोपहर में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ताकि मेरे तरफ से कमी रह जाए। एवर रेडी, आंख खोल करके हाथ उठाकर बैठे। लेकिन हम लोग इतने हतभाग्य हैं, फिर भी नहीं जाते हैं। जाते क्या, फिर भी सुनते नहीं, नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कैसे? हम राग से तो देख नहीं सकते। उनका दर्शन, उनके दृष्टि का आकर्षण करने के लिए एकमात्र योग्यता है भगवान की कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना। आप बताएंगे, एक बात मैं पूछता हूं, भगवान कृष्ण का गीत जो है भगवत गीता, भगवान के गाया हुआ गीत, इसलिए भगवत गीत उसका नाम पड़ा, भगवान के गीत। महाभारत युद्ध के शुरुआत में 18 अक्षौणी बड़े बड़े सैनिक सेनाओं के बीच में कोई व्यासासन लगाकर बैठ करके क्लास के अंदर क्लास बोले थे उन्होंने? नहीं, गाड़ी में स्टेरिंग के हाथ पकड़े हुए खड़े खड़े लड़ाई के मैदान पर दोनों सेनाओं गन पॉइंट पर हुई बच चुका था, शंखवाद्य हो चुका था, उसके बाद में दोनों सैनिक बिल्कुल लड़ाई के मैदान पर गन पॉइंट पर खड़े हैं, उनके बीच में गाड़ी में खड़े खड़े आधा एक घंटा कुछ अर्जुन को समझाने के लिए कुछ बात बोल दिए। जब से बोले आज पर्यंत नहीं, जब तक युग रहेगा तभी तक बड़े बड़े विद्वान सर फोड़ देंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, इतने महाज्ञान है, सारे ज्ञान के मुकुटमणि शास्त्र है, हमारे सनातन धर्म का तो वही धरोहर है गीता शास्त्र, इतने दिव्याति दिव्य शास्त्र है। हमारा सरकार भी उनको कोई गीता को छू देते मानते हैं सच कहेगा, सत्य कहने के लिए प्रतिज्ञा करना होता है गीता धारण का, इतने पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इतने दिव्य ग्रंथ है, जिसको खड़े खड़े बोल दिए थे ऐसे ही, कोई बैठ करके सोच मनन ध्यान करके व्यासासन बैठ कर नहीं बोले थे, ऐसे ही लड़ाई के मैदान पर खड़े खड़े बोल दिए। वो जो भगवान के ज्ञान, क्या उन्होंने धर्मराज जो आजन्म सत्यवादी दूसरी उनको नहीं बोले, पितामह आजन्म ब्रह्मचारी पितामह भीष्म को नहीं बोले, द्रोण को, इतने बड़े बड़े नीतिज्ञ, इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी थे, उनको नहीं बोले, अर्जुन को क्यों बोले? अच्छा बोले तो बोले, चलो अर्जुन उनका सखा था, साथी था उनका दो, लेकिन वो जो गीता इतने हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि ग्रंथ माना जाता है, शिरोग्रंथ माना जाता है, इस ग्रंथ का जो गीता को पाठ करते हैं जिसमें 700 श्लोक है, उसमें आप सब पढ़े होंगे गीता, उसके गीता का सबसे प्रथम नायक कौन है, किसी शुरुआत फर्स्ट एक्टर कौन है जिसका नाम सबसे प्रथम है? श्री धृतराष्ट्र। कैसे व्यक्ति थे, कोई अच्छे व्यक्ति थे बोलिए? ऐसे ही अंधे तो थे, दोनों प्रकार से अंधे थे, अंदर से बाहर से। इतने बड़ी दुष्ट थे, इतने बड़ी पापात्मा थे, अत्याचारी थे। पांडु पुत्र जन्म होने से पहले ही उनको सुखा ने मारना चाह रहे थे, है ना? नहीं, कितने अन्याय, कितने घोर अन्याय, कितने पाप किए हैं। तो ऐसी बड़ी दुष्चरित्र पापी के नाम इतने पवित्र ग्रंथ का सबसे पहले क्यों आया? हम गीता पाठ करेंगे, सबसे पहले नाम आएगा धृतराष्ट्र। ये कैसे? ये थर्ड क्लास का नाम लेकर के सबसे पवित्र ग्रंथ को पाठना शुरू करेंगे धृतराष्ट्र पांच से? क्यों, कभी सोचे आपने उसका पीछे क्या रहस्य है? भाई इतनी बड़ी पवित्रतम ग्रंथ है, उसका तो शुरुआत ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवत वासुदेव, और कितने बड़े भक्त भगवान किसी का नाम सुन। अरे सबसे थर्ड क्लास घटिया माम का, जिसके पहले श्लोक बोलते मेरे पुत्र इतनी महा आसक्ति है, इतनी बात की, इतने ऐसे घटिया व्यक्ति का नाम सबसे पहले कैसे रखा गया? और वो नाम कभी मिटेगा ही नहीं, जब तक गीता रहेगा उनका नाम रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टर उनको रखा गया। क्यों? व्यासदेव जी का बुद्धि खराब हो गया क्या? सबसे पहले उनका नाम की भक्ति है, और कोई पात्र नहीं मिला उनको क्या? क्या पात्रता था, क्या योग्यता था उनके अंदर, जो भगवद गीता जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का सबसे प्रथम उनका नाम आया? व्हाट क्वालिफिकेशन है यार? कोई दूसरा क्वालिफिकेशन, एक ही गुण था, जो एक ही महान गुण के कारण इतने पतित अवस्था में होते हुए भी धृतराष्ट्र को ये सब भगवद गीता का श्रीमद भगवद गीता प्रथम पात्रता मिला। ये गुण कुछ नहीं था, सुनने का इच्छा, सुनने का इच्छा। इसीलिए सबसे प्रथम श्लोक में वो पूछते हैं संजय बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। उनको देखने के लिए शक्ति देते थे, वो मना के बोले मैं देखना नहीं चाहता। व्यासदेव जी के पुत्र का तो उन्होंने उनको आंख दिव्य दृष्टि दे सकते थे बोले ना, लेकिन सुनने का इच्छा है बोलो। ये श्रवण लालसा, सुनने की इच्छा इतनी बड़ी महागुण है, जिसके कारण धृतराष्ट्र जैसे प्रतिदि व्यक्ति को भी इतनी महापात्रता, इतनी बड़ी योग्यता दे दिया कि भगवद गीता के सबसे प्रथम नायक के रूप में उसको रखा गया, और जुगपत रहेगा वो। तो सोचिए, हम जैसे हुड़बक व्यक्ति अगर केवल भगवत कथा सुनने के लिए अपना अंदर लालसा पैदा करें, इच्छा पैदा करें, चाह पैदा करें, तो क्या से क्या नहीं हो जाएंगे हम लोग। जैसे बताया रुक्मणी जी, कोई भगवान आकर छीन कर ले, किडनैप कर लिए, योग्यता कुछ नहीं था, सुनी थी उन्होंने, सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा ही एक ऐसी महान, अपने आप में ऐसी महान गुण है जो कहीं से कहां तक उठा देगा। बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, सब साधन उसी के अंदर है। हमारे जो महासाधन भक्ति है, भक्ति नौ प्रकार का होता है, नवधा भक्ति कहा है। नौ प्रकार भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। बाकी सारे काम पीछे। बात ये कहूं, अभी तक आप लोग ने जो मेरे सामने सुधी जन सब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, आप लोग सच में बताइए अनेस्टली, अभी तक आपने जो कुछ जाने हैं कैसे जाने? यहां तक कि आपने नाम क्या है, अपने गांव क्या है, अपने पिताजी के नाम क्या, कैसे जाने? सुन करके ना, देख करके, छू करके नहीं, जो कुछ अब तक जाने हैं और भविष्य में जो कुछ जानेंगे, उपाय केवल एक ही है, सुन करके। श्रुति ही ज्ञान, इसीलिए हमारा वैदिक ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? श्रुति, श्रुति शास्त्र, जो सुनकर ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमारे अंदर ही गुण के कमी है, सुनने का ही इच्छा नहीं, बाकी सब कुछ, तो कैसे हम लोग ज्ञानी बन सकते, कैसे हम अच्छे बन सकते, है ना? तो इसलिए अभी ये चर्चा, भगवान ने इस लीला करते हैं, क्यों ऐसा लीला करते हैं, ऐसा अद्भुत अद्भुत लीला भागवत में कहा गया है, उद्धव भगवान करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानसिं तनुमाश्रितं भजते तादृशी क्रीड़ा जाश्रुता तत्परो भवेत्। भगवान का ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला करने का पीछे क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, क्यों किए, और कुछ नहीं था, केवल एक ही उद्देश्य था, क्या? अनुग्रहाय भक्ताना, आपने भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए भगवान ऐसे मधुर मधुर लीला करते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके लीला करते हैं। मानुषी तनुमाश्रितम भजते तादृशी, ऐसे ऐसे मनुष्य शरीर में लीला करते हैं, क्यों ना उसको सुन करके भगवान का हो जाएंगे, मम साधर्म मागता भगवत धाम को चले जाएंगे केवल सुन करके, तत्परो भवे उनका जैसे हो जाएंगे केवल श्रद्धा से सुनने से। ये सुनने के लिए कुछ मैटर सप्लाई करने के लिए भगवान ने लीला करते हैं, है ना। तो भगवान ने अपने तरफ से तो इतने लीला करते ही रहते हैं, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे हो। तो भगवान की विशेष अनुकंपा है, इतने बड़ी घोष यात्रा उत्सव किए, उसका पीछे जो रहस्य उत्तर सुनना चाहिए ना। खल नाच गाकर खा पी कर आ जाने से तो काम नहीं चले, कैसे समझेंगे इसका पीछे क्या रहस्य है, क्यों रथ यात्रा करते हैं, क्यों इतना दिन तक रहते हैं, क्यों केवल भाई बहन को ले जाते हैं, क्यों इनको नहीं लिए, क्या किए, उसका पीछे महान रहस्य छिपा हुआ, जानेंगे तब दिल खिल उठेगा, अरे ऐसी बात है क्या, नहीं सुनेंगे तो कैसे जाने। यही लक्ष्मीपति भगवान जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गमन में गए थे तो चतुर्मास व्रत किए, कहाँ पे ना, श्रीरंगम में। वेंकट भट्ट थे जो मुख्य पुजारी थे रंगनाथ जी के, उनके घर में रहे, चार महीना रुके, क्या करते थे, सुबह कावेरी में स्नान करते थे, स्नान करके आ करके नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, दोपहर में प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेने के बाद बैठते थे, क्लास शुरू होता था, अरे रात तक देर तक कथाई चलता था, और पूरे सपरिवार सपरिकर बैठते थे, भट्ट परिवार। जो वेंकट भट्ट है, जो उनसे वयोज्येष्ठ है महाप्रभु से, उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, श्री रंगनाथ जी के मुख्य सेवक है, मुख्य पुजारी थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, उनके एक एक भाई तो सन्यासी थे, परिमल भट्ट जो प्रभुदानंद सरस्वती बने, तो उनके साथ चर्चा होता था, और उनका ईश्वर जो है लक्ष्मीपति वैकुंठपति लक्ष्मी नारायण उनके उपासक है, तो वो तो मानते थे कि दी गॉड है लक्ष्मी नारायण, उन्हीं से सब, कृष्ण कृष्ण सब उनसे आए, बाकी तो परमेश्वर नारायण है, लक्ष्मीपति नारायण। तो भगवान ने सुनते थे, बोले ठीक है आपकी मान्यता, आपने पूजा दी। एक दिन बड़े ऐसे सहज भाव से, सरल भाव से बातें करते करते थट्टे मजाक से बोले आजा भट्ट जी, आपके जो उपास्य थे लक्ष्मी नारायण, हाँ हाँ लक्ष्मी नारायण तो नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर तो ना, हाँ वो है, लेकिन मैंने इसे सुना है, शास्त्र में इसे लिखा गया है, आपके लक्ष्मी देवी तो परम पति, हाँ हाँ उनके जैसा पतिव्रता महालक्ष्मी है, साक्षात वैकुंठ नायक परमेश्वरी है, हाँ सती जागृत पतिव्रता है, मैं मानता हूँ तो है ना, लेकिन पतिव्रता तो इसको कहते हैं जो हमेशा पति के साथ रहें, पति के अलावा दूसरे किसी का स्वप्न में भी सोचे भी नहीं, उनके पास जाएगी नहीं, लेकिन मैं शायद मैं इसे सुना हूँ कि अपनी लक्ष्मी जी भी वृंदावन में प्रवेश करने के लिए अभी भी तप कर रही है आकर, क्यों वैकुंठ में क्या कमी था, वैकुंठ में उनके पति देव हैं, सब थाट बाट वैसे सब कुछ है, वैकुंठ छोड़ करके अपने पति को छोड़ करके ये ग्वाला के पास आने के लिए क्यों बैठा है, ऐसा क्यों परम पति प्रता। भट्ट जी भटक गए, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, अरे ये कृष्ण और नारायण मंत्र थोड़ी है, व्यक्ति दोनों एक ही है, नाम अलग अलग होने से व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति है, जो कोई भी ड्रेस बनकर आ जाए, अभी वैकुंठ में बैठ गया कभी वाला बनकर आ गया, व्यक्ति तो एक ही है, तो उसमें क्या है, उसमें उनका पास चाहे उनके पास है, उसे पतिव्रता कहानी क्या है, कैसे हो सकता है, अरे भाई आप पतिव्रता स्त्री है, आपके पति धोती पहने तो पति के साथ रहें, पैंट शर्ट पहने से नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी चाहे पैंट शर्ट पहने जाए, धोती पहने जाए, गमछा पहने जाए, कोई पहने, पति तो पति है, एक ही व्यक्ति है, ड्रेस से क्या मतलब है, तो बोले चाहे वैकुंठ में रहे चाहे ग्वाला रूप में कहीं रूप में उनका उनका पतिव्रता है ना, बात बिल्कुल सही है, आप दोनों सही है, हाँ हाँ नारायण कृष्ण क्या कोई नहीं, सब अंतर एक ही है, तो इसलिए उनका पतिव्रता ना, बात तो सही कहे, उनको छोड़ करके यहाँ आ गए, लेकिन जब एक ही व्यक्ति है कोई आंच नहीं आता, जो ये जो गाय चराने वाले हमारे कृष्ण है, महाप्रभु बोलते हैं हमारे कृष्ण जो गाय चराने वाले हैं ब्रज में रहते हैं उनके जो पत्नी है तो गोपीगण नहारे ग्वालिन है, ये ग्वालिन लोग तो ब्रज में गांव वाली है, वो तो एक दिन में नहीं गए वैकुंठ में देखने के लिए भाई कैसा है, और वो वैकुंठ छोड़कर क्यों वहां आती, आप उसका जवाब ही नहीं, बात तो सही है, वो क्यों एक दिन नहीं गए, जब दोनों पति एक ही हैं चाहे उनका पास रहे चाहे उनका पास रहे वो वहां चले जाते भाई, बहुत बढ़िया इतने सुंदर मकान भवन वैकुंठपुरी जितना कितना सुंदर है, वहां एक दिन में गाय गोबर छोड़कर एक दिन नहीं गई वहां, गोबर गोमूत्र कीचड़ है ना, नहीं वहां छोड़कर एक दिन भी नहीं गए और वो वैकुंठ प्रसाद छोड़कर के वहां गोशाला में आती है, ऐसा क्यों, केवल इतना नहीं एक दिन तो भगवान कृष्ण जब रास में उपलब्ध हो गए थे वो चतुर्भुज हो गए वैकुंठ मूर्ति नारायण बन गए, तो सब गोपियां ढूंढते ढूंढते गए कृष्ण अनुसरण में जाकर देखे नारायण, वो नारायण जी नमस्कार सा, हाँ कृष्ण को देखे क्या, वो नारायण जी कुछ बोले नहीं, अरे यही तो कृष्ण ही है, वो चल गए उनको जुहार करके दंडवत करके चल दिए, उनके पीछे एक सेकंड भी खड़े नहीं रहे, जब एक ही है तो आकर्षित होते उनके प्रति नहीं आकर्षित हुए, नारायण स्वयं चतुर्भुज रंग चक्रधर खड़े उनके पीछे देखा ही नहीं चल दिए उनको पूछ करके, और आप लक्ष्मी नारायण को छोड़कर बरसों ये ग्वाला के पीछे क्यों पड़े, आप उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाए, वेंकट भट्ट हाथ जोड़ दिए मुझे पता नहीं, मैं भी सुनाऊ इस बात को लेकिन क्या मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे रहस्य है, ये रहस्य केवल महाप्रभु के लीलामृत को सुनने से ही पता चलेगा कि क्या है असली परमेश्वर, कौन है, कौन असली है, कहां से सब निकला है, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह, इस बात को पृष्ठ पोषक लीला जो है ये सब इस अमृत कथा से मिलता है, इसको जब नहीं समय कैसे पता चले, है ना, नहीं तो ऐसे ऐसे एक एक दिन का लीला, जैसे रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा के बाद में भगवान कैसे रहते हैं, क्यों रथ यात्रा क्या होता है, आज जैसे हेरा पंचमी था पंचमी तिथि में कितनी बड़ी लीला भगवान ने बड़े आकर्षित रूप से देखते हैं, अपने परिकर के साथ इस लीला को बड़े संग से आस्वादन करते हैं, और दूसरे दिन जो भगवान वापस जाएंगे दशमी तिथि में एकादशी के दिन सुना वैसे होकर के अपने ऐश्वर्य दिखाएंगे, फिर दो दिन यहाँ रहेंगे, फिर जो घर जाते समय गरीब बाबर जो बचने का होता है खूब लड़ाई होता है लक्ष्मी जी के और नारायण के जगन्नाथ जी के, वो कबाड़ बंद कर देते हैं अंदर नहीं घुसते, और बड़े मधुर मधुर लीला है, कहाँ आप लोग जानते हैं, नहीं सुनेंगे तो जानेंगे कैसे, है ना, जगन्नाथ जी जब रखे हैं तो जगन्नाथ जी की लीला को सुनने जानना समझना चाहे ना, तब तो जगन्नाथ जी के साथ संपर्क आप बढ़ेगा संबंध बढ़ेगा, अरे हमारा ठाकुर ऐसा है क्या, देखने में तो ऐसे नहीं लगता, है ना, हमारे कृष्ण श्याम सुंदर खड़े हैं मकर कुंडलवान बड़े सुंदर सुंदर कान में कुंडल पहने, हमारे ये ठाकुर तो कान ही नहीं है कान उनका बड़े बड़े आंख है कान ही नहीं, तो इतने बड़े बड़ी प्रार्थना स्तुति करते जहां कान नहीं तो सुनेगा किसे, जिसे कान ही नहीं है श्रुति इंद्रिय नहीं है तो सुनेगा किसे, अब हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठा कि हमारे ठाकुर जो है उनका तो कान तो है ही नहीं केवल आंख ही है, तो हम इतने प्रार्थना करते सुनेंगे कैसे, कोई सोचा नहीं अपने, कभी जगन्नाथ जी कुंडल देखा आपने, नहीं कान ही नहीं है तो कुंडल कैसे बनेंगे कान नहीं क्यों ना बड़े बड़े आंख, तो इसीलिए भक्त लोग कहते हैं जगन्नाथ जी को वो है चक्षुश्रवा, सुनते हैं आंख से सुनना बड़े जोरदार है, आप जानते हैं आंख से और कौन सुनता है, सांप, सांप का कान है देखा कभी ना, सांप का भी कान नहीं होता लेकिन सांप नहीं सुनता क्या, ठक फट से खड़ा हो तुरंत आवाज सुनेगा, कान नहीं कैसे सुनता है, वो भी चक्षु श्रवा ठीक है, हमारे ठाकुर ऐसे महाकाल सर महाकाल है, आंख से ही देखते हैं आंख से ही सुनते हैं, आप क्या करते हैं घर में बैठकर छिप छिप कर सारे देखते हैं सारे सुनते भी हैं सारे समझते हैं, ऐसा नहीं कि आपको छिप लेंगे कुछ कर लेंगे मन में कर लिया ऐसा नहीं मंदिर में जाकर अच्छा बन जाऊंगा घर में कुछ बन जाऊंगा, नहीं 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 अमोघ दृष्टि अमोघ श्रुति, यही बैठे बैठे अल्टर में अबाध रूप से सब कुछ सुन लेते हैं सब कुछ देख लेते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं रह जाएगा, वैसे ठाकुर के सामने आपने आप को खोलने के अलावा कोई उपाय नहीं, सब देख लिया, सब सुन लिया, समझ गया। तो कहा है कि झूठा बन कर रहे, खोल दो दिल, खोल कर मुझे सब कहूँ अब दोषी हूँ, कान पकड़ता हूँ, अभी जो आप करे सो करे, है ना। तो इसी जगन्नाथ जी के बारे में सुन करके संबंध स्थापित करें, तब फिर आपके आस्वादन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार आज ये विशेष तिथि है हेरा पंचमी, जिसके द्वारा जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के लीला के रस का आस्वादन किए थे महाप्रभु, इस लीला को बड़े पार्षद रस को आस्वादन किए थे, ब्रज रस को, इसको देखकर वैकुंठ रस ब्रज रस का तुलना इसमें दिया गया, विभिन्न प्रकार नायक और नायिका के रस की तुलना दिया गया। तो इस प्रकार भगवान मंदिर में आकर भगवत कथा सुन करके इस गंभीर रस को आस्वादन कीजिए और उसका आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर हरि की मानंद। Yeah.